अब आगे देखेंगे आयत 44 से, यहाँ से मौजूद ज़ाहर चेंज हो रहा है जो 46 तक रहेगा। अलम तरा इलल लज़ीन उतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने उन लोगों को देखा जो किताब का एक हिस्सा दिए गए। इशारा है उलमाए यहूद की तरफ। क्या करते हैं वो, यश तरू न दलालत व युरीदू नंत दिल्लुस सबील, वो गुमराही को ख़रीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी सीधी राह से बहक जाओ, बदल जाओ, अपने रास्ते को छोड़ दो। इशारा है यहाँ उलमाए यहूद की तरफ। पीछे सूरत बकरा में तफसील से हमने देखा कि तौरात को उन्होंने एक्सरसाइज बुक बनाया हुआ था, अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर कमी बेशी करते रहते, निकालते चीज़ों को, कभी डाल देते और उसके बाद फिर उसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या आपने उनको देखा कि जो इस तरह के काम करके करते, क्या यश तरून दलाला, वो गुमराही को ख़रीदते हैं। मुराद क्या है इससे कि जिस किताब से हिदायत देनी थी या लेनी थी, मिलनी थी, उसकी बजाय गुमराही देते थे। वह युरीदून अन तदिल्लुस सबील, और इस चीज़ का इरादा करते हैं कि तुम भी सीधे रास्ते से बहक जाओ। ये तुम कौन हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के नबी को वो क्यों बहकाना चाहते थे? इसकी वजह यह है कि जो खुद रास्ते से भटक चुका होता है, फिर उसको दूसरा शख्स भी रास्ते के ऊपर नहीं दिखता। यह इस आयत का एकदम मौसू बदल जाना क्या मानी रखता है? क्या इसका पिछली आयत से कोई ताल्लुक है? तो बिल्कुल ताल्लुक है। अब देखिए कि पिछली आयत में हमने अभी तयम्मुम और मसा और इस तरह की सारी चीज़ों को पढ़ा था। इस किस्म के जो मसाइल होते हैं ना, इनको आम करना और दूसरे लोगों तक ले जाना, ये दीन वालों का काम होता है। उलमा का जो फरीज़ा है वो ये है, जब वो मुबल्लिगीन बनके आम पब्लिकली लोगों के बीच में बातचीत करें, तो उनको वो मसाइल आम करने चाहिए जो लोगों के अमल के होते हैं। लेकिन जब दीन के ऊपर कुछ और चीज़ों का गलबा हो जाता है, तो तफरकेबाजी, आपस की बातचीतें, मज़हब बुनियादें, इख्तलाफात, फिकही वैसे इतनी होने लगती हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल होते हैं उस पर बात करने का मौका कम ही मिलता है। तो अल्लाह ताला यहाँ उम्मत मुस्लिमा के दीनदारों को ये नसीहत करते हैं कि देखो, तुम्हें भी ये किताब मिली है, तुम्हें तो पूरी मिली है, लेकिन अहले किताब को वो तो नसीब मिनल किताब थे, पूरी किताब नहीं मिली थी। ये पूरी क्यों नहीं थी मिली? इसकी वजह यह है कि तौरात मुकम्मल शरीयत नहीं थी, उसके अंदर उस दौर की चीज़ें तो थी लेकिन क़यामत तक की चीज़ें नहीं थी, और उसमें कानून साजी तो थी लेकिन उसके अंदर दिलसोजी की कमी थी। फिर बाज़ अहकामात इंजील में आए और बाकी कुरान पाक में आए। और दूसरी वजह इसकी ये बताई गई, एक हिस्सा क्यों, कि उन लोगों ने इल्म तो हासिल किया लेकिन अमल नहीं किया। ये बहुत बड़ा नुक्ता है इसके अंदर कि तौरात के अंदर इल्म की हद तक तो खूब बहसें की, लेकिन जहाँ बात आ गई किस चीज़ की, अमल की, उसको छोड़ दिया। अमल की बात इसमें हमारे लिए क्या निकली कि अगर इस वक्त सिर्फ हम कुरान पाक पढ़ के ही इसको छोड़ दें और इसी पे खुश हो जाएं, तो ये एक हिस्सा आपने पढ़ा है। इवन आप पूरा कुरान भी पढ़ लें, समझ लें, तर्जमे के टेस्ट दे दें, असाइनमेंट्स लिख लें, लेकिन आपने अभी किताब का एक हिस्सा पढ़ा है। दूसरा हिस्सा जो अमल से मुतल्लिक है, वो इंसान जब तक पूरा नहीं करता उसके बगैर जो है हिदायत नहीं मिलती। फिर आप देखिए कि ये जो बात है कि युरीदून अन तदिल्लुस सबील, यहाँ सबील का लफ्ज़ आया है, आमतौर पर सिरात मुस्तकीम का लफ्ज़ आता है, तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे रास्ते से बहकने की जो उनकी ख्वाहिश थी उसकी तरफ इशारा है। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए, तो यहूद उससे पहले दीन वाले थे, बज़ाहर यही लगता है कि अल्लाह के नबी आए थे तो उनको खुश होना चाहिए, लेकिन वो अल्लाह के नबी के दीन पर आने पर खुश होने की बजाय उन्हीं के दुश्मन बन गए, क्योंकि उनको ये यकीन था कि अगर अल्लाह के नबी की बात आगे आ गई तो हमने जो अपनी मर्ज़ी के रास्ते बनाए हुए हैं वो भटक जाएंगे। यहाँ सिराते मुस्तकीम की बजाय सबील की बात करके ज़ाहरदारी की तरफ मानी दिया गया। सबील सुबुल से है, और सुबुल कहते हैं आसानी से चलना, जिस रास्ते पर चला जाए। सिराते मुस्तकीम मुश्किल रास्ता होता है और वो बहुत ज़्यादा जामे लफ्ज़ है, और सबील सीधी सी बात है, यानी ज़ाहरी कोशिशें ये करते रहेंगे, तुम्हें इधर उधर की बातों में उलझाएंगे, कभी ये मसला उठाएंगे, कभी ये सवाल लोगों से आ कहेंगे जाओ पूछ के आओ, ये सुन के आओ, ताकि तुम इधर उधर की बातों में सीधे रास्ते से भटक जाओ। اور اللہ کے نبی چوں کے دل کے صاف تھے، وہ ہر ایک کو اپنا دوست سمجھتے تھے، اسی سچے اور صاف ستھرے دل کے ساتھ ان سے ملتے تھے جس سے دوسروں سے ملتے، لیکن ان کے دلوں میں ابھی کھوٹ تھا، ابھی یہ دل سے پوری طرح اللہ کے نبی کی طرف نہیں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آگاہ کرتے ہیں کہ واللہ اعلم بأعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، یعنی تمہیں نہیں پتہ، تم میں بتا رہا کہ یہ دشمن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے، قیس بڑا عقل مند بہت ہوتا ہے، لیکن بھولا بھالا تھا، وہ زیادہ چلاکی ہوشیاریوں میں نہیں پڑتا کہ فلاں یہ سوچ رہا ہوگا، فلاں یہ کر رہا ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا کہ بندہ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے دوسروں کو، یعنی جیسا وہ خود ہوتا ہے ویسے ہی دوسروں کو سمجھتا ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے سب کا دل صاف ہے۔ جو خود کسی کی غیبت نہیں کرتا تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی بھی کوئی غیبت نہیں کرتے، جو جھوٹ نہیں بولتا اس کو لگتا ہے دوسرے بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اب اللہ کے نبی کے دل میں کوئی بات نہیں تھی، یہ سب سے مخلص ہی تھے، تو آپ خوشی خوشی ان کی محفلوں میں جاتے، ان کی دعوتوں میں جاتے۔ آپ کو اللہ کے نبی کے عمل سے دکھے گا کہ بعض دفعہ یہود کے گھر میں کھانے کی دعوتوں پہ بھی جاتے تھے۔ اب اللہ کے نبی تو صاف دل کے تھے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ دشمن دل میں دشمنی رکھے ہوئے کسی وقت زہر دے دیں، اور انہوں نے دیا، یا کسی وقت باتوں ہی باتوں میں آپ سے آپ کے راز لے لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ذرا سوچ کے رہیے گا، ذرا سنبھل کے رہیے گا، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ اور اسی طرح عالمو کا معنی کو صرف جاننے کے معنوں سے لے کے ذرا اوپر جائیں تو اس سے مراد ہے کہ اللہ آپ کے دشمنوں سے آپ نمٹ لے گا۔ عالم نمٹنے کے معنوں میں بھی ہے کہ آپ نے تو ان کے ساتھ معاملہ اچھا رکھا، آپ نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے دلوں میں جو آپ کے لیے ہے، پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ان سے دے گا۔ آپ ان کی سازشوں پر پریشان نہ ہو، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ تو اٹھتا ہی رہتا تھا۔ مدینہ کی فضا کو انہوں نے بہت کم مطمئن ماحول بننے دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، تم اپنا کام کرو، اللہ تمہارے دشمنوں سے نبٹ جائے گا، کیونکہ وکفا باللہ ولیا، اللہ کی دوستی کافی ہے، اللہ کی حمایت کافی ہے، وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ کافی اور مددگار ہے۔ کیا بات پتہ چلی اس میں کہ جو اللہ کے راستے پہ نکلے گا اس کو اللہ کا کام کرتے ہی جانا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی ولایت اور اللہ کی طرف سے نصرت لینا چاہتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اس کام کو پیچھے ڈال کے صرف ذات کا دفاع، نام کا دفاع کرنے لگتا ہے، تو وہ کام پھر اللہ کا کام نہیں رہتا، ذات کا اور انسانی جنرل کام ہوتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے بندے کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، کام کرتے جاؤ، اور جو کوئی کہتا ہے، جو کوئی بری بات کہتا ہے، کوئی فتنہ اٹھاتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، اس کو اللہ کے حوالے کرو کہ اللہ تو جان اور تیرا کام جانے۔ اور یہی اللہ کے نبی کا اخلاق تھا کہ جس کے نتیجے میں جن لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان تھا وہ اسلام کی طرف آ گئے، اور جو کھوٹے تھے، دل کے کھڑے نہیں تھے، ان کو آہستہ آہستہ مکہ سے دور کروا دیا گیا۔ پھر آگے ان کی مزید خیانتوں کا تذکرہ ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن موادیہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیّا بألسنتهم وطانن فی الدین۔ بعض لوگ، یعنی یہود جو کہتے ہیں خود کو، وہ بات کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جاؤ، اور کہتے ہیں کہ رائنا، موڑ کر اپنی زبانوں کو، اور تانے لگاتے ہیں دین میں۔ کتنی کھول کے اللہ تعالیٰ نے ان کی لسٹ بتا دی کہ یہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، ذرا ان سے محتاط رہیے، معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اب ان کی وہ خیانتوں کا تذکرہ ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ پہلی بات، انہوں نے جو کی وہ کیا تھی، یحرفون الکلمہ موادیہ، چیزوں کو جگہ سے بدلتے تھے۔ یحرفون کا لفظ حرف سے ہے، پیچھے گزر چکا، تحریف کے معنوں میں، کلم کلام سے جمع ہے، یعنی کلمات کو۔ اب یہ کون سے کلمات تھے، اس سے دو مختلف معنی لیے گئے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ کلم سے مراد ان کی پچھلی کتابیں ہیں، یعنی تورات اور انجیل جو تھی، تو اپنی کتابوں کی باتوں کو بدل دیتے تھے، اور وہ ہم پیچھے بہت تفصیل سے دیکھ چکے کہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ شوشہ اٹھا رہتا تھا۔ دوسرا کلم سے مراد ہے کہ نبی پاک کی مجلس کی باتوں کو باہر جا کر مس کوٹ کرتے۔ ہمارے ہاں اس کو آپ کہیں گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کرنا۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم یہاں قرآن پاک پڑھتے ہیں، एक जन्नत की आयत आती है, एक जहन्नुम की आती है, एक अमल की आती है, एक बेअमली की आती है, और घुला मिला एक माहौल बनता है। सुनने वाला दीन की एक बुरी बात समझ के आ जाता है। मसलन पिछली आयतों में से ही इसको मिसाल ले लीजिए कि हमने आयत पढ़ी थी कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़रबुस्सलात वअंतुम सुकारा, ठीक है। अब कोई बंदा इस महफिल में सिर्फ 10 मिनट के लिए आए और उस वक़्त सिर्फ ये हिस्सा डिस्कस हो रहा था कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़रबुस्सलात, दैट्स इट। बाहर जाके क्या कहेगा? वो कहती है नमाज के करीब भी ना जाना, बिल्कुल ना पढ़ना नमाज। और अगर हो सकता है कोई दूसरा बंदा ऐसे वक्त में आया हो जब ये वाक्या चल रहा हो कि अब्दुलरहमान के घर में शराब का दौर था और सहाबा ने शराब पी थी, बस आया बात करके अपने कोई काम की चला गया, बाहर जाके कहे पता है आपको ये कहते हैं सहाबा शराबी थे। ये होता है युहर्रिफून अल-कलिमा अम मवादीही। और ये चीज़ दीन की तबलीग नहीं, ये तहरीब का जरिया बन जाती है। इसलिए कोई बात जो सुने पढ़ते पढ़ाते के दौरान जब आगे कोट करें तो पहले एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र फरमाएं, क्या ये बात वहाँ करने की ज़रूरत है? पूरी कर रही हूँ, क्या दी कर रही हूँ? बात संभाल लूँगी कि नहीं संभाल लूँगी? बाज़ दफ़ा शोशा छोड़ के आ जाते हैं और जो लोग होते हैं उनको एक नया मौजू मिल जाता है कि देखे देखे ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो यहूद जो थे अल्लाह के नबी की मजलिसों में आते थे और वहाँ से फिर उठती उठती बातें लेकर जाते थे। और आज भी आपको कभी अगर मौका मिले, बाज़ दफ़ा इंटरव्यूज़ होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की तरफ से रेडियो टीवी नेट पे, जब मुसलमान खूब जोश जोश में बड़े बड़े जुमले बोलते हैं तो वो उसको काट कर इस तरीके से पेश करते हैं कि वो बातें बिल्कुल कुछ से कुछ लगती हैं। तो ये तो पुरानी आदत थी। दूसरा उनका जुर्म, वयकूलूना समेना, ऊंची आवाज़ से कह देते थे सुन लिया, दिल में कह देते थे वह सही ना, हमने मानना थोड़ी है। और कुछ सुनते तो थे और अमल से कह देते थे नहीं मानना, ठीक है। और कुछ तो इतने मुंह फट हो चुके थे कि मुंह से ही कह देते सुनते ही, समय ना वह सही ना, सुन ली हैं बातें आपकी, मानेंगे कोई नहीं। ये सब तरह के रवैये मुख्तलिफ तौर में मुख्तलिफ लोगों के जो थे सामने आते रहे। तीसरा उनका जुर्म क्या था? वस्मा गैर मुस्माइन, ये बददुआ देते थे अल्लाह के नबी को। वस्मा गैर मुस्माइन, वस्मा को कहते हैं, ये असल में वो अरब का एक मुहावरा है। इसका अगर तर्जमा करें ना गैर मुस्माइन, तो इसका मतलब है कि तेरी बात ना सुनी जाए। बददुआ देते थे कि तुम गैर मकबूल हो जाओ, तुम्हारी शोहरत ना रहे, लोग जो तुम्हारी बात सुनने आते हैं वो ना सुने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बातें यहूद की ज़ुबान से निकलती थी। जब वो देखते थे कि लोग झुंड दर झुंड आ रहे हैं, बाहर से भी आते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात सुन जाते थे तो उनकी राय आपके बारे में बदल जाती थी। तो ये गुस्से के मारे जलते कुड़ते अल्लाह के नबी के लिए ये बातें बोला करते थे, गैर मुस्मैन, अल्लाह करे तुम मेरी ना ही सुनी जाए। बल्कि बाज़ जगह तो आता है कि आपकी मौत की बद्दुआ करते थे, ये मरी जाए तो अच्छा है, ये दुनिया से चले ही जाएं तो अच्छा है, ये क्या मदीना में आ गए, हमारे सुकून को इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये उनके अंदर के जो उबाल उठते थे ना उसकी बात है। और साथ ही साथ चौथी चीज़ क्या कहते थे? वराइनन, पीछे तस्करा इसका डिटेल से हो चुका है सूरत बकरा में, कि रायना कहने की बजाय लय्यम भी अलसिनतिहिम, जुबानों को मोड़ते हैं। लय्या पे भी बात पीछे हो चुकी, टॉकिंग के स्टाइल पे बात हो रही है, यानी रायना को राईना कह देते हैं। कैसे? कि जिससे पता चलता कि आप उनके नौजुबिल्ला चरवाहे हैं या बेवकूफ़ के मानों में। ये सब कौन करता है? जिसका दिल गंदा होता है, जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं होती, ये इस्लाम वालों की मोहब्बत नहीं होती। अगला जुर्म क्या है? वतानम फिद दीन, आपके दीन में ऐबी लगाते रहते थे, नए शोशे, आपने ये कह दिया। अब देखिए कि कभी आप जाके तारीख के वो बाब पढ़िए जो बिल्कुल मदीना की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर थे, यानी यहूद बिल्कुल हर मौके पे अल्लाह के नबी को अपने एक हरीफ के नाम से लेते थे। अल्लाह के नबी हरीफ नहीं थे, समझते हैं हरीफ किसको कहते हैं? हलीफ दोस्त को कहते हैं ना, हल्फ से, तो हरीफ ऑपोजिट, ओपोनेंट के मानों में। ये दुश्मन नहीं होता, हरीफ क्या होता है? जहाँ हर वक्त आपका तकाबुल हो, एक चीज़ देखी तो साथ ही दूसरी का ख्याल आ जाए। ये ना चाहते हुए भी अल्लाह के नबी को अपना मद्दे मुकाबिल समझते थे, कॉम्पोनेंट समझते थे। जैसे सियासत में लोग मुख्तलिफ तरह से लोग आते हैं ना, कि एक को वोट मिले तो दूसरा समझता है कि मैं पीछे हो गया, ये सियासत समझ लेते थे दीन को। जिसकी वजह से अब जाहरी बात है कि लोग फिर हर वक्त तनकीद ही करते हैं ना दूसरों पे। तो ये अल्लाह के नबी के लिए इस तरह की बातें दिल में रखते हुए जब आपसे मामला करते तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, इनकी बातों पे दिल मैला ना करें, इन्होंने तो आपको रायना तक कर दिया और आपको दीन में ताने भी दे दिए। अब ये तो इन्होंने करा और ये बड़े खुश हैं कि देखा हमने आपकी दाल गलने नहीं दी। और कई ऐसे मौके, यकीन करें अल्लाह का ये हुक्म तो ऐसे ही होना था। मैं जो बात कहने लगी हूँ ये होनी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे सोचा हुआ था जैसे ही होना था। लेकिन सिर्फ हम अपनी बात को समझने के लिए ये कहना कि अगर मदीना में यहूद ना होते, जो दीनदार तबका था वहाँ का, अगर वो ना होते, वो तो नेटिव थे ही नहीं, वो तो वहाँ के रहायशी नहीं थे, वो तो बाहर से आए थे, सिर्फ सीधे सादे मक्का और मदीना के लोग होते तो जो काम 10 साल में हुआ था ना वो 2 साल में हो जाना था। जो लोकल मदीना के लोग थे उन्होंने इतनी जल्दी इस्लाम कबूल किया और उन्होंने इतनी जल्दी सीने से लगाया, ये 10 साल जो लगे ना, ये जैसे कहते हैं ना कि वो एक दूसरे को बस जस्टिफाई करने में ही लग गए। तो क्या अल्लाह ताला कल इनको इसका बदला नहीं देगा? इसीलिए बार बार आप देख रहे हैं कि इनका तस्करा आ रहा है। सूरह बकरा में हाई बात, अब सूरत आल इमरान में कुछ नसारा की बातें थी और अब सूरत निसा में आप फिर आगे पढ़ेंगे फिर यहूद की बातें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कुरान उतर रहा था उस वक्त। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कैसी बातें करते हैं। अब अल्लाह अगली हिस्से में बता रहे हैं कि ये करते क्या। वलौ अन्नहुम क़ालू, और काश के वो कहते, समेना हमने सुना, वअतौना और हमने माना। ये किस बात का जवाब है? समेना वासईना का, कि काश ये कहते कि हम सुनेंगे भी और हम मानेंगे भी। वस्मा और सुन किसके जवाब में कहते? गैरा मुस्मा इनके जवाब में। और वन जुरना कहते रायना के जवाब में। अल्लाह ताला ऑप्शन दे रहे हैं कि देखो इन्होंने अपनी किस्मत खुद ही ख़राब कर ली, अच्छी चीज़ को बुरा कहकर, ये कोई वो चीज़ तो बुरी हुई नहीं, ये बुरे बन गए। अगर ये सारा कुछ चेंज कर लेते, लकान खैर अल्लाहुम, यहाँ मुमन होना क्या चाहिए लफ्ज़ देखने में, कि लकान खैरुल्लका, ए नबी अगर ये सब कुछ ये कर लेते तो ये आपके हक में बहुत अच्छा होता। होता ना कि आपका मिशन आसान हो जाता, आपके रास्ते की रुकावटें दूर होती, जो फितनों को नपेटने में वक्त लगा वो इस्लाम को आगे फैलाते। हो सकता है कि फिर रोम और फारस और ईरान अल्लाह के नबी के दौर में फतह हो जाते। लेकिन इन्होंने आपको घर के मामले में इतना उलझा के रखा कि जिसकी वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं सके। अल्लाह ने एक तो सहाबा से भी काम करवाना था, उनको भी इज्जत दिलवानी थी, ये उसकी हिकमतें हैं। वरना आप देखिए कि 10 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम जा सकता था, लेकिन नहीं गया। क्यों? क्या आप असल में इस सारे फितनों में होता क्या इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ लकान खैरल्लहुम है ना, इसके नीचे डाउन एरो लिखिए कि उनके हक में कैसे बेहतर होता कि जन्नत मिल जाती, अल्लाह के गज़ब से निकल के उसकी मोहब्बत में आ जाते। ठीक है उनको तो फ़ायदा हो जाता, लेकिन टैक्स के नाते से अगर हम ये देखें कि अल्लाह के नबी के लिए कैसे ये बेहतर होता कि आपका रास्ता आसान होता, दीन फैल जाता। बज़ाहर हमें ये लगता कि माशाल्लाह हम तारीख की किताबों में ये लिखा हुआ पाते सीरत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और 10 साल में पूरे ग्लोब पे इस्लाम फैल गया, तालियां खुशी बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया या नहीं हुआ उन लोगों के रवैयों से, उसकी दो फवायद सामने आते हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने इन 10 सालों में मुख्तलिफ हालात में दो चार करके एक ऐसा गिरोह तैयार कर लिया जिन्होंने अल्लाह के नबी के बाद काम करना था। और ऐसे लोग हमेशा मुश्किलों की भट्टी से निकलते हैं। जैसे कच्चा सोना ढलता नहीं है ना, या कोई चीज़ आप पका लें जब तक पके ना वो गलती नहीं या पकती नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला के काम करने के लिए जो लोग मतलूब होते हैं ना, वो फितनों और आजमाइशों के अंदर से निकलते हैं, वो प्रूव कर देते हैं कि हम स्टिल अल्लाह के दीन के साथ हैं। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह के नबी पे उहद के मौके पे मसला आया, गज़वे मुरैसी पे मसला आया, बनु मुस्तलक और ये सारी चीज़ों में आया, तो इसमें से लोग और पक्के होते गए। इसका दो फायदे होते हैं। कभी आपने किसी को ईंटें बनाते हुए देखा होगा कि जब वो भट्टी में डालते हैं ना तो जो अच्छी ईंटें होती हैं वो मज़ीद पक्की हो जाती हैं और जो कच्चे बर्तन होते हैं वो टूट जाते हैं। यानी एक खामोश, एक फितरत का निज़ाम है। हवा चलती है दरख्तों पे, जब बहुत सारा बूर लगा होता है, आंधी चलती है, कच्चा बूर झड़ने लगता है क्योंकि वो खोखला होता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो और ज़्यादा पकने लगता है। अब इन 10 सालों में अल्लाह के नबी की मौजूदगी में इतने फितने उठाए गए कि जिससे लोग मुश्किलें बर्दाश्त करने के काबिल हो गए। 7 साल पहले गज़वे उहद में अल्लाह के नबी की मौत की खबर फैला के ये बता दिया कि एक दिन इस नबी ने जाना है। फ़ायदा क्या हुआ कि जब असल मौत का वक्त आया तो वो हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए। ये ऐसे जैसे आप अपने घर में अपने 3-4 बच्चों के साथ रहते हैं अगर कभी आपने अपने बच्चों को किसी मसले में ना इन्वॉल्व किया और घर में बिल्कुल सही चीज़ें चलती हो, आप ज़रा घर से बाहर निकलेंगे ना तो वो बच्चों के लिए बाज़ दफ़ा बहुत सारी मुश्किल आ जाती हैं। उन्होंने ज़माने की धूप छाव देखी नहीं होती, उतार चढ़ाव नहीं देखे। इसके बरक्स वो बच्चे जो पहले ही माँ बाप की ज़िंदगी में खूब मुश्किल से गुजर चुके होते हैं, फिर वो माँ बाप के बाद बहकते नहीं हैं। तो अल्लाह ने काम तो करवाना था। अगर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बाद भी रोम, फारस और ईरान, इराक मुसलमान हुए तो वो अल्लाह के नबी का हिस्सा था, लेकिन अल्लाह ने दूसरा इसमें यह भी था कि सहाबा का हिस्सा भी डलवाना था। फिर उनके हिस्से क्या था जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, जो अपने आप को परखते रहे। तो अल्लाह ताला कह रहे कि वंजुर लकान खैर अल्लाहुम, इनके लिए तो बेहतर होना ही था। कहाँ गए और कहाँ आते। मेरे दिल में ना बड़ी हूक उठती है यहूद के लिए, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं समझ आता कि लोग इन लोगों से नफरत कैसे करते हैं या उनके दिल में इनके लिए गुस्सा क्यों है। मेरे दिल में हूक उठती है, मैं कहती हूँ ऐसे लगता है जैसे कोई बिल्कुल कुएं के पास से प्यासा आ जाए, समंदर के पास से प्यासा आ जाए। जिन तक नहीं पहुंचा था वो तो नहीं पहुंचा, और जो नई दीन को समझते थे वो तो नहीं समझते थे, ये तो दीन वाले हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के नबी का भी दिल तड़पता था। तो अल्लाह ताला यहाँ उनके लिए कह रहे हैं कि इनके लिए भी बेहतर होता वह अकवामा। अकवम बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, सबसे सीधा। ये वही लफ्ज़ है जो कौम है, कौम के लफ्ज़ के साथ अलिफ लगा दे तो अकवम, अफअल सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, अफजल व तफसील, कि ये सबसे सीधा रास्ता था। इन्होंने जो टेढ़ मेढ़ निकाली, इन्होंने ये हुज्जतें पेश की, आप में ये मसला, आप में ये मसला, आपके ये कानून, ये कानून, ये सारी बातें पीछे डाल दो, ये अगर इस तरह सीधे सीधे चलते तो ये था दुरुस्त रास्ता। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, और लेकिन अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके कुफर की वजह से, दूर कर दिया। लान के मानों में बोध होता है, यानी अल्लाह ताला ने इनको बिल्कुल हिदायत से दूर कर दिया। क्यों? कितना शुक्री की वजह। कुफर का लफ्ज़ ना शुक्री, इनकार, तकजीब के लिए आता है। यहां कौन सा मानी है, इनका कुफर कौन सा था? अल्लाह के नबी की ना शुक्री की, ना कदरी की, और आपकी हैसियत का इनकार किया। ये कब होता है? जब बंदा खुद बड़ाई का शिकार होता है। फला युमिनून इल्ला खलीला, पस नहीं ईमान लाते मगर थोड़े। उंगलियों पे गिने जाते हैं वो लोग जो यहूदियत से इस्लाम की तरफ आए थे। जितने लाखों के मजमे अल्लाह के नबी के इस दौर में जमा हो चुके थे सहाबा की सूरत में, उनमें सिर्फ 5-6-7 लोग जो थे वो यहूद में से थे। किसने रोका उनको? कौन सी एसोसिएशंस थी जो रोकती गई? उन्होंने तो कल क़यामत के दिन उनके काम नहीं आना, लेकिन जब सोच एक बना दी जाती है तो उसके नतीजे में आप देखिए कि खैर की दावत जितनी मर्जी आम कर दी जाए, फ़ायदा वही उठाता है जो अपने आप को हर रस्सी से आज़ाद करके सिर्फ अल्लाह की इताअत की रस्सी में बांधना चाहता है। तो इन सारी बातों में जो हम सबको अपने मुहासबे के लिए करना है वो क्या करना है कि कभी सच्चे दीन के आगे रुकावट नहीं बनना। कभी आपका ख्याल है ना कि हम रुकावट बन के इसको रोक लेंगे, तो वही होगा कि जो पानी के आगे दीवार डालता है तो वो पानी और ज़्यादा जोश से साइडों से आता है, लेकिन उस बंदे का नसीब ख़राब होता है कि उसने क्या लिया, उसने रुकावट ली। और अल्लाह ताला के नबी के दुश्मनों का तذکرہ करके अल्लाह ताला क़यामत तक के लोगों को इस बात की दावत देते हैं कि तुम अपने काम करते रहो, किसी के लिए बदनीयत ना रहो, बुरी बात ना सोचो, ना कहो, ना बदगुमान हो, ना किसी का मुहासबा करो, अपना मुहासबा करते रहो कि कहीं मेरा ये मामला तो नहीं कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करता रहूं और मैं बस ऐसी ही बातें दिल में कुछ लेके ज़ुबान से कुछ और कहता रहूं। सीधे रहो, अकवम, सीधा सीधा चलो, अल्लाह का दीन पेश करते रहो, जिस तक पहुंच जाएगा अल्लाह ताला उसके दिल को खोल देगा। यहाँ तक हम अब तिलावत सुनेंगे जी। इनका सवाल है कि बाज़ार जाते हैं और वज़ू नहीं है और नमाज का वक्त हो गया, तो पानी तो है, या सफ़र की कोई भी कैफियत जिसमें पानी है तो सही लेकिन वज़ू करना मुश्किल लग रहा है, या बेपर्दगी का मसला है, तो क्या किया जाए? तो आप देखिए कि इस एक सवाल के अंदर दो तीन मुख्तलिफ बातें आ सकती हैं। पहली बात यह है कि जब भी घर से निकलें बावज़ू होके निकलें, मौत तो कहीं भी आ सकती है, तो बंदा अगर बावज़ू हो तो अच्छी उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि जब भी बाज़ार या कोई ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ आपके पास ऑप्शन है और आपको लग रहा है कि आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, तो देख लें कि कोई नमाज आगे बिल्कुल करीब तो नहीं, अगर है तो साथ जाए नमाज रख लें और वज़ू से पढ़ लें। और आखिरी सूरत यह है कि सारी बातें हो गई ठीक है लेकिन वज़ू नहीं रहा, तो कर लीजिए कहीं भी, कोई हरज की बात नहीं। इस सूरत में तयम्मुम आप नहीं कर सकते, पानी मौजूद है और सिर्फ आप ये सोचे स्काफ उतारना पड़ेगा या मेकअप बदल जाएगा या बाया उतारना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए پہلے سے ایسے میئرس لیجئے کہ جس کی وجہ سے پھر آپ اس نماز کو پڑھ سکیں. جی ان کا سوال ہے, انہوں نے سبق میں سنا کہ مٹی میں بچے کھیلتے ہیں تو زیادہ صحت مند ہوتے ہیں, تو کیا پھر بچوں کے فیڈرز کو دھونا اور ابالنا نہیں چاہیے؟ تو آپ دیکھیے کہ جیسا بھی دور ہوتا ہے نا, پھر اس کے تقاضے ویسے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ نے شروع سے اپنے بچے کو اتنا سینسٹیو کر دیا ہوا ہے تو کر لے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ صفائی کو اسلام پسند کرتا ہے تو اس ناطے سے صفائی والی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں نا کہ اس طرح کرنے سے میرا بچہ اب ضرور صحت مند رہے گا, یہ سوچ نہ رکھیں, ٹھیک ہے. کوشش کریں صاف رکھیں, لیکن ذرا کچھ چیزیں دین کے معاملے میں نہیں آتی, گناہ اور ثواب سے ہٹ کے چلیں. ماں کی اپنی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے, ہر وقت فیڈر ہی دھو رہی ہے, یہ کر رہی وہ کر رہی. صاف ستھرا رکھیں بچے کو, جیسے آپ خود پلتے ہیں ویسے اپنے بچوں کو پالیں, لیکن نہ بالکل ان کو اس طرح کر دیں کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈھیلے ہو جائے, اور نہ بہت ہی کھینچ کے رکھیں, ٹھیک ہے.
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.